నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవాయ. ఓం అజ్ఞానతిమిరా. సభీ భక్తో కా స్వాగత్ హై హమారే ఆజ్ కే బుధవార్ కే కార్యక్రమ్ మే. పిచ్లే హఫ్తే అర్జున్ నే కులనాశ్ కే జో చార్ దోష్ భగవాన్ శ్రీకృష్ణ కే సామనే ప్రస్తుత్ కియే హమ్నే ఇస్కీ చర్చా కీ. ఔర్ అబ్ తక్ అర్జున్ కులనాశ్ కే జో జో పరిణామ్ హై, క్యా క్యా ఔర్ దోష్ కుల్ కా నాశ్ హోనే కే వజహ్ సే హో సక్తే హై, వో అబ్ తక్ సమాప్త్ నహీ కియే హై, ఔర్ కితనే సారే ఔర్ దోష్ ఆ సక్తే హై, ఇస్కే బారే మే అర్జున్ అబ్ అగ్లే శ్లోక్ మే జో ఆజ్ హమ్ లేనే వాలే హై. మేరే ఖ్యాల్ సే 41వా హై, నే వో నంబర్ థోడా గలత్ హో గయా, శ్లోక్ యహీ హై 41వా. సంకరో నరకాయైవ కులజ్ఞానాం కులస్య చ పతంతి పితరో యేషాం లుప్త పిండోదక క్రియాః. సంకరో నరకాయైవ కులజ్ఞానాం కులస్య చ పతంతి పితరో యేషాం లుప్త పిండోదక క్రియాః. సంకరో నరకాయైవ కులజ్ఞానాం కులస్య చ పతంతి పితరో యేషాం లుప్త పిండోదక క్రియాః. సంకరో కా అర్థ హై వర్ణ సంకర. వర్ణ సంకర్ కా అర్థ క్యా హై? అవాంఛిత్ సంతాన్ వర్ణ సంకర్ కా అర్థ. అర్జున్ కహ రహే హై కి వర్ణ సంకర్ అవాంఛిత్ సంతానో కే వజహ్ సే నారకీయ జీవన్ ప్రచలిత్ హోగా. నరకా యే ఏవ, ఏవ కా అర్థ హై నిశ్చిత్ రూప్ సే. యహాన్ పర్ అర్జున్ ఐసా నహీ కి ఆశంకా వ్యక్త కర్ రహే హై కి నారకీయ జీవన్ ప్రచలిత్ హోగా. ఏవ నిశ్చిత్ రూప్ సే నరకీయ జీవన్ హోగా, జహాన్ పర్ అవాంఛిత్ సంతాన్ ఉత్పన్న హోతే హై కుల ధర్మ్ కే నాశ్ కే వజహ్ సే. కులజ్ఞానాం కులస్య చ పతంతి పితరో యేషాం, ఔర్ ఉస్ నారకీయ జీవన్ కే వజహ్ సే జో ఉస్ కుల్ కే పితర్ హై, పిత్ర, उनके लिए कोई पिंडोदक और वो क्रिया जल क्रिया या पिंडोदक क्रिया करने वाला कोई नहीं रहेगा. अर्थात अर्जुन यहां पर जो अवांछित संतान से उत्पत्ति होगी और संतानों की अवांछित, उसके विषय में बता रहे हैं अर्जुन को. और जो उनके वंशज जो गुजर चुके हैं वो कैसे भुगतेंगे नारकीय जीवन, इसके विषय में बता रहे. तो दोनों तरफ से, पीछे से और आगे से, दोनों तरफ से कैसे नाश ही नाश देखा जा रहा है. तो अब तक जो पिछला श्लोक हमने लिया उसमें चार दोष कुल नाश के चार दोष बताए और इसकी चर्चा हमने पिछले हफ्ते की। कुल विनाश से कुल धर्म का नाश, कुल धर्म के नाश से अधर्म में वृद्धि, अधर्म से कुल की स्त्रियां प्रदूषित, स्त्रियों के प्रदूषण से अवांछित संतान। कितने दोष रह गए? दो। तो आज का जो श्लोक हमने लिया, संकरो नरका यैव, तो इसमें अब अर्जुन आगे के दो दोष बता रहे हैं। ये जानना आवश्यक है कि अर्जुन ये सारे जो दोष निम्नलिखित बता रहे हैं भगवान को, ये कोई उनकी मनोधारणा नहीं है, ये धर्मशास्त्र से बता रहे हैं। भगवान जो कि धर्मशास्त्र के रचयिता हैं, ज्ञाता हैं, उन भगवान को अर्जुन धर्मशास्त्र को कोट कर सुना रहे हैं कि ये युद्ध करने से क्या क्या होगा। तो यहां पर देखिए, कुल धर्म और अधर्म में वृद्धि, कुल धर्म का नाश, अर्थात कुल धर्म का अर्थ है कि जब कोई, आजकल तो छोड़ दीजिए, पिछले युगों में जब कोई किसी कुल में पैदा होता तो उस कुल का धर्म निर्धारित होता उसके लिए। तो कुल के धर्म का पालन नहीं करने के वजह से कोई व्यक्ति पूछ सकता है, तो भाई अधर्म कैसे पैदा होगा? हां, ये मान लेते हैं कि हम कुल के धर्म का पालन नहीं कर पाए, परंतु ये कैसे कह सकते हो कि पापमय जीवन हो जाएगा? फिर आपको समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो कि किसी व्यक्ति ने सरकारी नौकरी नहीं की, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो जेल में जाए उसकी वजह से। सरकार की नौकरी नहीं करने के वजह से कोई, मैंने अपराध तो नहीं किया। अब यहां पर हम लोग जो हैं, आप में से कुछ एक इक्का दुक्का होंगे जो सरकार की नौकरी कर रहे होंगे डायरेक्टली, तो क्या सरकार यदि यह कहे कि जो हमारे सरकारी धर्म का पालन नहीं कर रहा, हमारी सरकारी नौकरी नहीं कर रहा, वो जाएगा जेल में, तो ये न्याय तो कुछ ठीक नहीं हुआ। तो ये प्रश्न यदि कोई पूछे कि यदि कुल में धर्म का पालन कोई नहीं कर पा रहा, इसका अर्थ ये नहीं कि वो पापी हो गया, तो कैसे आप समझोगे? ये जो दूसरा कारण, कुल धर्म के नाश से अधर्म में वृद्धि, हाँ? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो बाद की बात हो गई। हाँ, तो करने वाला कोई नहीं रहेगा, परंतु अधर्म कैसे बढ़ेगा? पाप क्यों करेंगे वो लोग? ये एक न्यूट्रल स्टेज हो गई ना, कुछ नहीं किया जा रहा, परंतु यहां पर अर्जुन बोलते हैं कि कुछ होगा। ये न्यूट्रल स्टेज नहीं बता रहे अर्जुन, पाप होगा, अधर्म होगा। हा? अच्छा, एक प्रश्न यदि मैं पूछूं, एक है धर्म और एक है अधर्म, इसके बीच की कोई स्थिति है? धर्म और अधर्म के बीच की कोई स्थिति होती है क्या? नहीं होती। पक्का? नक्की? बीच की कोई स्थिति नहीं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं थोड़ा धार्मिक हूं और मैं थोड़ा अधार्मिक, नहीं, ये बात सत्य नहीं हो सकती। जैसे कि एक परिवार में एक व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा था। सबसे बड़ा लड़का था, उसका विवाह नहीं हो रहा था, अर्थात उसको जो जिस प्रकार की पत्नी चाहिए थी वो पत्नी नहीं मिल पा रही थी। तो बहुत सी लड़कियां दिखाई गईं और अंततः और सब में कोई ना कोई खोट वो देख लेता। तो अंततः एक स्त्री दिखाई गई जो कि उसके अनुसार सब कुछ रूप में, गुण में, ऐश्वर्य में, पैसे में, जाति, परिवार सब में अनुसार मैचिंग। तो जो बीच वाला एजेंट, क्या कहते हैं, शादी लगाने वाला जो भी पंडित जी, तो उन्होंने कहा कि बाकी सब ठीक है, ये जो स्त्री है ये थोड़ी सी गर्भवती है, शी इज अ लिटिल प्रेग्नेंट। बस क्या कहोगे आप? अभी फिलहाल कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आगे का बोल नहीं सकते। तो ये जो यदि कोई कहे कि वो स्त्री थोड़ी सी गर्भवती है, इसका अर्थ है वो थोड़ा सा जो गर्भ धारण किया है वो थोड़ा सा नहीं रहने वाला, उसमें वृद्धि होने वाली है। तो कोई व्यक्ति यदि कहे कि मैं खाली सैटरडे को दारू पीता हूं, बाकी मैं मंगलवार को छूता भी नहीं, मंगलवार को नहीं, और गुरुवार को ये मंदिर, मंगलवार को यहां, शनिवार को, तो उसी प्रकार से अर्जुन यहां पर ये देखते हुए भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि जब धर्म का पालन नहीं होगा अर्थात अपने आप अधर्म का पालन होगा या अधर्म में वृद्धि होगी, जैसे कि सूर्यास्त होते ही अंधकार की वृद्धि होती है। ऐसा नहीं कि कोई अलग से अंधकार को इकट्ठा करकर कहीं से लाकर हर रात को फेंकता है, अभी सूर्यास्त हुआ लाओ इकट्ठा करकर अंधकार को। यहां पर उसमें कटौती, यहां पर वृद्धि। तो इससे हमें क्या समझना चाहिए कि हमारे लिए भी जो निर्धारित धर्म है, मनुष्यों का धर्म, कई बार लोग इस सिद्धांत का पालन करते हैं कि भाई ये गीता, भागवत, ये धर्म का पालन करने की क्या जरूरत है, बस बी राइट, बी अपराइट, आप कुछ पाप मत करो। कई बार आपने सुना होगा, कई बार लोग बोलते मैं कभी झूठ बोलता नहीं, किसी को धोखा देता नहीं, अपने काम से काम रखता हूं। क्या कहते हैं, जियो जीने दो। तो ये जो प्रकार का सिद्धांत है, ये सिद्धांत, हां कोई व्यक्ति चेष्टा नहीं कर रहा पाप करने की, परंतु ये संसार इसी प्रकार से बनाया गया है कि कोई व्यक्ति बिना पाप किए जी नहीं सकता। व्यक्ति सांस ले रहा है, चल रहा है, खा रहा है, कुछ नौकरी कर रहा है, अलग अलग प्रकार के कार्यों में लगा है, कहीं ना कहीं उससे पाप हो रहा है अनजाने में भी। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रबर बैंड खरीदा, जाकर कि दुकान से जाके एक रबर बैंड खरीदा, तो शास्त्र के अनुसार क्या ये पुण्य का काम है या पाप? या बीच में कुछ भी नहीं, क्या रबर में कौन कोई अभी रबर बैंड खरीदा, पता है कितना बड़ा पाप है? नहीं, बाहरी दृष्टिकोण से समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर क्या पाप छिपा है। हो सकता है कि वो रबर बैंड जहां पर बना वहां पर वो जो वर्कर कर्मचारी वो पाप के द्वारा वहां पर लगाए गए थे और किसी को बहुत तकलीफ देते हुए किसी ने वो रबर बैंड बनाया। तो ये कर्म का चक्र ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति उस रबर बैंड का इस्तेमाल भी करता है तो भी कुछ न कुछ प्रतिशत जहां पर वो बनने में पाप लगा है। रबर बनाने के लिए कितने पेड़ मारे होंगे वो रबर ट्रीज, तो उसका जो पाप, और वो रबर बैंड फिर यदि कोई किसी ऐसे कार्य के लिए इस्तेमाल करता है जो कि शुद्ध भक्ति का नहीं है। आप यहां पे कनेक्शन देखिए, तो वो जो पेड़ जिसको काटा गया हो सकता है कि कहीं अफ्रीका में, हम यहां नासिक में रबर बैंड इस्तेमाल कर रहे हैं और वो रबर ट्री को कहीं अफ्रीका में काटा हो और वो रबर ट्री से जो बना हुआ रबर और उसका जो रबर बैंड कोई व्यक्ति यहां इस्तेमाल कर रहा है, परंतु उसका यदि डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल नहीं हो रहा तो उसका कुछ प्रतिशत अधर्म और रबर बैंड के साथ भी हम खरीद रहे हैं। अब यदि पूछा जाए कि क्या वो रबर बैंड पुण्य का काम है खरीदना है कि पाप का काम है, तो आपको मैं डरा नहीं रहा, तो आप सोचोगे अभी ये पेंसिल रबर जो भी खरीदने जाओ उसके पीछे उसका फैक्ट्री कहां है, वो किस चेतना में उसको ये किया वो किया। अंततः भगवान क्या कहते हैं, यत करोषि यत अश्नासी यत जुहोषी ददासी यत सर्वधर्मान परित्यज्य। ये सब कुछ करने के वजह से, जैसे कोई जल है, जल में कोई कीटाणु है जीवाणु है, हम देख नहीं पाते कितने कीटाणु जीवाणु हैं उसके अंदर। सीधा बॉईल करो, सीधा बॉईल करो तो जितने जीवाणु कीटाणु हैं वो सारे वहां मर जाएंगे और वो जल शुद्ध हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि बॉईल करके पिया करो। तो उसी प्रकार से हम नहीं जानते कि हमने कौन सा कर्म कब किया, किसके वजह से हमको क्या मिल सकता है। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र उस भट्टी के समान है, उस अग्नि के समान है जहां पर सब कुछ हमारा शुद्ध हो जाता है। अनजाने में सब कुछ हरे कृष्ण महामंत्र शुद्ध कर देता है। इसलिए अर्जुन यहां पर धर्म की व्याख्या बहुत ही गहराई में जाकर दे रहे हैं। आगे के दो दोष जो आज के श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं, अवांछित संतानों से नारकीय जीवन, नारकीय जीवन से कुल के पितरों की पिंड क्रिया की समाप्ति। अब आगे हम इसकी चर्चा करेंगे कि अवांछित संतान की परिभाषा क्या है। अंग्रेजी में जिसे कहेंगे अनवांटेड प्रोजिनी, अनवांटेड चिल्ड्रन, अवांछित। कभी किसी ने कोई इच्छा नहीं की कि ये ऐसा कोई पैदा हो बच्चा, परंतु अब किसी न किसी प्रकार से इस पृथ्वी को उससे रिक्त मुक्त किया जाए। तो नारकीय जीवन अवांछित संतानों से कैसे उत्पन्न होता है और फिर उसके वजह से कुल के पितरों की पिंड क्रिया की कैसे समाप्ति होती है। अब यहां ध्यान देना होगा कि अर्जुन दो प्रकार के नारकीय जीवन, दो प्रकार के लोगों के लिए नारकीय जीवन बन जाएगा, कुल का नाश, कुल धर्म का नाश और अवांछित संतानों की उत्पत्ति के वजह से। कुल के हत्यारे अर्थात कुलघाती जो इस युद्ध में इन योद्धाओं को मारेंगे तो वो कुलघाती कहलाए जाएंगे। अर्थात अर्जुन अपने बारे में बोल रहे हैं कि मैं जब मारूंगा इनको तो मैं इनके कुल का घातक बनने वाला हूं, तो मेरे लिए नारकीय जीवन बनने वाला है ये। और दूसरे हैं उनके लिए नारकीय जीवन बनेगा जो वो सदस्य बच गए, जो मरे नहीं। तो एक जो बच गए मरे नहीं और एक जो मारे हैं इनको, इन दोनों के लिए नारकीय जीवन। अर्थात तीसरी श्रेणी कौन सी बच गई? युद्ध में तीन श्रेणियां हो सकती हैं, एक जो हत्यारे हैं, एक जो हत्यारे का अर्थ हत्या कर दी, मर गए ना वो दूसरों का, दूसरी श्रेणी जो बच गए, तीसरी श्रेणी जो मर गए, तीसरी श्रेणी जो मर गए। तो यहां पर अर्जुन मानो भगवान श्री कृष्ण को ये नारकीय जीवन के संदर्भ में ये बोल रहे हैं कि मैं तीसरी श्रेणी में जाना चाहता हूं। कौन सी? मैं मरना चाहता हूं, क्योंकि इनके हाथों यदि मैं मर गया तो मुझे नारकीय जीवन नहीं मिलेगा, मुझे स्वर्गीय जीवन मिलेगा। क्योंकि युद्ध भूमि में यदि मैं मरता हूं तो स्वर्ग को प्राप्त होऊंगा। तो यहां पे आप कल्पना कीजिए कि अर्जुन किस हद तक इस युद्ध को नहीं करना चाहते और उसे सिद्ध करने के लिए अपने आप की हत्या भी कराने के लिए वो स्वीकृत हैं। तो इसलिए ये तीन श्रेणियों का उल्लेख करते हुए अर्जुन अपने आप को उस तीसरी श्रेणी में डालना चाहते हैं कि यदि मुझे कोई मार भी दे तो अच्छा, इन दोनों श्रेणी में मुझे नहीं होना, कुल का हत्यारा या फिर मैं बचा रहा, नहीं, इन दोनों श्रेणी में मुझे नहीं रहना। यहां पर हमें यह समझना चाहिए कि पिछले युगों में, जैसे ये तो द्वापर युग है, द्वापर युग में ही धर्म के विषय में लोग कितना सोचते थे। जैसे आजकल लोग धंधा, नौकरी, पैसा, इसके बारे में कितना सोचते हैं ना, कि किसी परिवार में बच्चा पैदा होने से पहले वो क्या करेगा। यदि बच्चा पुत्र होगा, पुत्री होगी तो क्या होगा, पहले से कितना सोच विचार लोग करते हैं। किस संदर्भ में? बस पैसों के संदर्भ में। उसी प्रकार से पिछले युगों में धर्म के संदर्भ में इतना सोच विचार चलता रहता था। यहां पे देखिए अर्जुन कहां कहां आगे सोच रहे हैं, पितरों तक पहुंच गए कि पिंडों तक कौन देगा उनको। अब आजकल कौन सोचता है पितरों के बारे में, पूछा जाए पितर कौन, पितर कौन सी चिड़िया का नाम है, और कराओ भी तो आजकल किससे कराते हैं, वो जो ये सब पिंडोदक क्रिया करा के देते हैं, अरे पहले उनका उद्धार निश्चित है क्या, जो वो पितरों का उद्धार कराएंगे, पहले उनके उद्धार के बारे में कोई कुछ करे फिर वो पितरों के बारे में सोचना, वो दूसरी बात है। तो इसलिए अर्जुन यहां पर अर्जुन के इन श्लोकों के द्वारा हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कितनी सूक्ष्मता से धर्म के विषय में जागरूक रहना है और उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करनी है। छोटी छोटी चीजें धर्म के विषय में, जैसे अर्जुन यहां पर बोल रहे हैं। अब अवांछित संतान के संदर्भ में शास्त्रों में ये दो उदाहरण दिए हैं। अवांछित संतान की तुलना अवांछित पौधे से की गई है और अंधी आंख से की गई। क्या समझे आप, मुझे समझाइए थोड़ा। अवांछित पौधे, ये तो समझ में आ रहा है, वीड्स जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। तो कई बार जो किसान है उसे यदि अपनी फसल को सुरक्षित रखना है तो ये जो अवांछित पौधे हैं, ये अवांछित पौधों जैसे ही ये उगते हैं जड़ सहित निकालना होता है। यदि जड़ सहित आपने कभी यदि किसी कृषि क्षेत्र में देखा होगा तो ये किसान लगे रहते हैं केवल ये अवांछित पौधों को निकालते हुए, क्योंकि इनमें से यदि एक भी अवांछित पौधा रह जाए तो वो अच्छी फसल को खा जाता है। तो इसे क्या समझ में आ रहा है? अवांछित संतान। तो दुर्योधन पैदा होने से पहले ये घोषणा कर दी गई थी कि ये कुल का नाश करने वाला है, इसलिए इसको पहले खत्म कर दो। अंधी आंख, ये श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है श्रीमद् भागवत में कि अवांछित संतान अंधी आंख के समान है। कैसे? एक तो वो कुछ दिखाएगी नहीं आंख, और वेदना देती है, पीड़ा देती है वो आंख, और कुछ दिखाती नहीं। तो ये अवांछित संतान उसके समान है। अच्छा, अब सबसे पहले अवांछित संतान की परिभाषा क्या है? जैसे अंग्रेजी में वेस्टर्न जो कल्चर है उसके विषय में बताया जाता है कि अधिकांश जो वहां पैदा होते हैं, कोई प्रयोजन नहीं है उनके पैदा होने का, इसलिए वो लोग कहते हैं मेनी पीपल आर बॉर्न ओवर अ बॉटल ऑफ विस्की ऑन अ सैटरडे नाइट। समझ में आया आपको कि स्त्री पुरुष का समागम हुआ किसी पार्टी में दारू पीने के बाद और वहां से किसी की उत्पत्ति हुई। जैसे कि नवरात्र जो चल रहा है, यदि आप जानते हैं बंबई में क्या होता है ये नवरात्र के बाद, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कई बार आजकल कलयुग में लोग ये जो गर्भपात या अबॉर्शन के नाम पर कहते हैं कि ये अवांछित संतान है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो भी कोई अबॉर्शन कराता है ये कहते हुए कि भाई आपकी गीता में बोला है, यदि कहे अवांछित संतान से क्या क्या होगा, नारकीय जीवन, पिंडोदक वगैरह नहीं होगा, तो क्या वो अवांछित संतान को गिरा देना अच्छा है? हाँ, उसको गिरा देना पाप है, परंतु ये जब पैदा हो जाएगा तो और फिर पाप बढ़ाएगा, नारकीय जीवन। हाँ, सबसे पहले ये जानना होगा कि वो अवांछित जो संतान, ये जो टर्म दिया है, ये माता पिता के वजह से हुआ है। जैसे मैं एक उदाहरण पहले भी दिया था, मेरा एक मित्र, वो काफी सब बड़ा हो गया, पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत हो गई, परंतु नौकरी धंधा कुछ नहीं लग रहा था। तो पिताजी ने पूछा, यार तुम इतना बड़ा हो गया, देखो बाहर दुनिया में लोग तेरी उम्र के नौकरी धंधा चालू करके सब कुछ उनका परिवार चल रहा है और तुम अभी ऐसे ही घूम रहे हाथ हिलाते हुए, क्या फायदा पैदा होने का? तो इसने पिताजी का, मैंने एप्लीकेशन डाला था क्या? क्यों किया पैदा? मैंने तो नहीं बोला था। तो ये कई बार ये अपने आप को बोल रहे हैं मैं अवांछित हूं, और कई बार अक्सर कलयुग में देखा जाता है कि कुछ ऐसे संतान हैं जो कि हाँ पैदा हो चुके हैं और अब किसी न किसी प्रकार से निभाना है, उनको पैदा करो, उनको बड़ा करो और फिर जो कुछ उनको शिक्षाएं वगैरह देने का प्रयास करते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत में महाराज चित्रकेतु की कथा है। महाराज चित्रकेतु को इतनी तीव्र इच्छा एक पुत्र प्राप्ति की, परंतु उनके भाग्य में नहीं था। जबरदस्ती वो अंगिर मुनि से हर्ष शोक नाम के पुत्र को प्राप्त किया और आगे चलकर जो हुआ उनके साथ। इसी के संदर्भ में पद्म पुराण में एक कथा है। तुंगभद्रा नामक नदी के तट पर यह गांव था रंगपट्टनम, और यहां पर एक ब्राह्मण रहा करता था आत्मदेव। ये आत्मदेव का विवाह हुआ धुंधली नामक एक स्त्री से, और ये धुंधली ये एकदम गिरी हुई चरित्रहीन स्त्री थी। झूठ बोलना, मक्कारी, व्यभिचार, सब इसी प्रकार के गोरख धंधे में लगे हुई ये स्त्री। अब आत्मदेव को पुत्र चाहिए था, वांछित संतान, इतनी इच्छा थी कि कोई पुत्र हो। आप जानते पुत्र का अर्थ क्या होता है? पुन नामक एक नरक है, और पुत्र का कर्तव्य है कि अपने पिता पूर्वजों को वो पुन नामक नरक से तारे, इसलिए पुत्र। और शास्त्र में इतनी कठोरता से कहा गया है कि यदि कोई पुत्र उस उत्तरदायित्व को नहीं निभाता, अर्थात धर्म का पालन कर यदि अपने पूर्वजों को पुन नामक नरक से नहीं तारता, तो वो पुत्र केवल मूत्र के समान है, फिर उस पुत्र को पुत्र नहीं कोई कह सकता। तो आत्मदेव, इनको ऐसा एक पुत्र चाहिए था। तो ये इतने सारे यज्ञ अनुष्ठान सब कुछ किया, परंतु कुछ नहीं हुआ। अंततः ये वन गमन इन्होंने वन की ओर निकल गए आत्महत्या करने के लिए। सोचिए कितनी तीव्र इच्छा एक पुत्र प्राप्त करने की कि आत्महत्या करने के लिए वन में निकल गए। और वन में वहां पर एक सन्यासी से भेंट हुई इनकी, और मरने से पहले सन्यासी के सामने इन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। तो सन्यासी वो आगे का भविष्य देखने वाले, उनके पास दिव्य दृष्टि थी, तो उन्होंने इसके जीवन को देखा, और रेखाओं को देखते हुए सन्यासी ने कहा कि भाई 7 जन्मों तक तुम्हारे रिकॉर्ड में कोई पुत्र लिखा नहीं, ये जन्म तो छोड़ दो, आगे के 7 जन्म भी कुछ नहीं, कोई पुत्र नहीं मिलने वाला। वो और दुखी, पहले तो ये एक ही जन्म में इतना दुखी कि आत्महत्या करने वाला, आप तो 7 जन्म बोल दिया। तो अब आत्मदेव ने सन्यासी से कहा कि यदि आपके अंदर ऐसी दिव्य दृष्टि है तो आपके अंदर शक्ति भी होगी कि किसी ना किसी तरीके से आप उसमें फेर लाकर मुझे पुत्र दिलाओ, कैसे तो, नहीं तो मैं आपके सामने मर रहा हूं। तो अब ये और ये सन्यासी दुविधा में पड़ गए कि फालतू बताए इसे, तो मेरे सामने मरने वाला है। तो इन्होंने क्या किया कि कहा ठीक है, एक दिव्य फल अपने योग सिद्धि से उत्पन्न किया, यज्ञ फल उत्पन्न किया और फल देते हुए कहा कि ये अपनी पत्नी को खिलाओ, परंतु मैं कोई गारंटी नहीं देता क्योंकि तुम्हारे भाग्य के अनुसार और कुछ लिखा हुआ है, मैं फिर भी तुम्हारे भाग्य में इन्फिल्ट्रेट कर रहा हूं, अंदर जा रहा हूं और कुछ उसको बदलने का प्रयास कर रहा हूं, बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं मैं, ये खतरा मोल ले रहा हूं। तो फल दे दिया तो इतना खुशी खुशी आत्मदेव गया और अपनी पत्नी धुंधुली धुंधुली को वो फल दिया। पत्नी पहले देखिए फिर से आ गया, पत्नी तो खुश हो गई थी गया, क्योंकि वो इतनी चरित्रहीन स्त्री, उसको लगा ये गया अब और पुरुषों के साथ संग हो सकता है। तो जा लाके फल दिया अपनी पत्नी को धुंधुली को और कहा कि ये खाओ और पुत्र होगा उत्पन्न। तो अब ये और चिंतित कि अरे 9 महीना उसको अपने गर्भ में रखकर फिर बाद में इतनी पीड़ा होती है उस जन्म की, और उसके बाद में कौन ये सब झंझट संभालने का झंझट। तो उसने क्या किया कि वो फल वो गाय को खिला दिया, उसके घर के बगल में गाय थी तो गाय को फल खिला दिया। तो अब ये पूछेगा ना पति आत्मदेव की फल खाया कि नहीं, क्योंकि वो फल में इतनी शक्ति थी कि पुत्र उत्पन्न होने ही वाला था। ये सब पिछले युगों की बातें हैं, आजकल चाहे कितना भी फल खिलाओ कहां से भी टोकरा भर भर के खिला दो। तो वो हालांकि वो धुंधुली इस प्रकार की चरित्रहीन स्त्री, परंतु फिर भी उसको विश्वास था कि ये फल से पुत्र उत्पन्न हो जाएगा, तो गाय को खिला दिया। तो अब पति को संतुष्ट करने के लिए कि हां वो फल से कुछ उत्पन्न हुआ है, तो कहीं से कुछ फेंका हुआ किसी का शिशु उठाकर ले आई, अवांछित संतान। किसी ने फेंका मतलब अवांछित संतान उठाकर ले, ये हो गया पैदा तुरंत, ये होता इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट गुलाब जामुन, इंस्टेंट पुत्र। तो इतना खुश हो गया आत्मदेव, मुझे हो गया, इसी जन्म में हो गया, धन्यवाद करने लगा सन्यासी को। अब वो उसका था नहीं पुत्र, वो तो कहीं से रास्ते से उठाया हुआ किसी का। तो इसका नाम हुआ धुंधुकारी, और ये महादुष्ट, ये महापापी, कोई संस्कार से पैदा नहीं हुआ, पता नहीं किसकी इच्छा थी क्या कि ये ऐसा पुत्र पैदा हो, अवांछित संतान। और बचपन से ही ये बस मार पीट कर कर लोगों को, अपने दोस्तों को मार मार कर जान से मार डालता, खेलते खेलते कहीं आग लगा देता, कहीं किसी को धक्का मार के कुएं में फेंक देता, गांव में सब प्रकार के अधर्म में लगाई है धुंधुकारी। अब वो गाय जिसने वो फल खाया, वो गाय को बछड़े के बदले एक मनुष्य उत्पन्न हुआ पुत्र, परंतु उसके कान गाय जैसे थे, शरीर उसका एक नर के समान, परंतु ये गाय के समान उसके कान। उसका नाम हो गया गोकर्ण, कि गौओं के कर्ण वाला, गोकर्ण उसका नाम। और ये क्योंकि यज्ञ फल के द्वारा और गाय के द्वारा उत्पन्न, तो ये एकदम सुशील और धार्मिक स्वभाव वाला ये गोकर्ण। तब ये धुंधुकारी ने इतना उपद्रव शुरू कर दिया कि अब फिर ये आत्मदेव जो पिताश्री, इनको अब समझ में आया कि मैंने जो अपने भाग्य को बदलने का प्रयास किया, जब मुझे वो सन्यासी ने कहा था कि नहीं लिखा गया उसको बदलने का प्रयास मत करो तुम, मैंने प्रयास किया और अब मैं भुगत रहा हूं इसके परिणाम। तो अक्सर फिर पिताजी ऐसे बोलते हैं, अरे तू पैदा ही क्यों हुआ, या फिर अरे तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया। तो उस प्रकार से अब धुंधुकारी के बारे में आत्मदेव, तो धुंधुकारी ने मार पीट कर आत्मदेव को घर से भगा दिया, पिताजी को। चलो तो पिताजी गए, अब पिताजी वन में फिर से, तो गोकर्ण, गोकर्ण ने जब ये स्थिति देखी तो गोकर्ण पहचान गए कि ये मेरे पिता हैं। तो गोकर्ण ने फिर पिताजी को श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद सुनाया वन में जाकर, और आत्मदेव वो श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद सुन के वो गए भगवत धाम। अब यहां पर धुंधुली और धुंधुकारी, क्या कॉम्बिनेशन है देखो। तो धुंधुकारी 10 कदम आगे अधर्म में अपनी मां से, तो मां को भी जो भी कुछ धन था, हीरे जो भी कुछ सोना इत्यादि था, वो सब कुछ लेकर मां को भी भगा दिया बाहर। तो धुंधुली ने आत्महत्या कर ली, कुएं में कूद के धुंधुली ने आत्महत्या कर ली। अब ये धुंधुकारी, इसने विवाह किया 5 वैश्याओं के साथ, देखिए ये अपना क्वालिफिकेशन बढ़ा रहा था अब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, तो पीएचडी हासिल कर ली, 5 वैश्याओं के साथ विवाह किया और घर में रख लिया उनको। तो हुआ क्या, ये वैश्याओं ने देखा इसके पास जितना भी धन है, काफी धन था, वो धन लिया और रात्रि में वो वैश्याओं ने इसको भी खत्म कर दिया, उसके मुंह में आग लगा दी। पद्म पुराण में वर्णन, मुंह में आग लगा दी। अब ये अपना क्या नाम, धुंधुकारी, धुंधुकारी अब मर गया, कोई अंत्येष्टि संस्कार कुछ नहीं, वैश्याओं द्वारा मारा गया और आग भी वैश्याओं द्वारा लगाई गई, तो ये बन गया भूत प्रेत। और ये वहीं पर मंडराता प्रेत की योनि में, और अब इसे समझ में आया कि जो जो इसने इतने सारे अधर्म पाप किए, जिसके वजह से अब ये प्रेतात्मा की योनि के पश्चात फिर यमलोक, यम यातना जो इसके लिए निर्धारित की गई थी, ये सब कुछ अब इसे समझ में आ रहा। तब गोकर्ण, वो जो भाई, भाई हुआ ना एक दृष्टिकोण से, तो गोकर्ण ने पहचान लिया कि ये प्रेत के रूप में इस घर में घूम रहा है। तो गोकर्ण ने क्या किया, 7 दिन का भागवत पाठ उस घर में रखा, और 7 दिन के भागवत पाठ के पश्चात धुंधुकारी वैकुंठ धाम गया। ये अवांछित संतान, ये अवांछित पौधा, अंधी आंख जो भी, ये धुंधुकारी इतने पाप में लगा हुआ। तो यहां पर पद्म पुराण की इस कथा से क्या समझ में आता है कि ये जो जितनी सारी जो बाकी क्रियाएं हैं, पिंडोदक क्रिया या अलग अलग प्रकार की क्रियाएं, श्रीमद् भागवत के सामने देखिए कि कोई व्यक्ति भूत प्रेत आत्मा में वो घूम रहा है और वहां से सीधा वैकुंठ धाम पहुंच सकता है, और सोचिए भूत प्रेतात्मा भागवत कथा कैसे सुनेगा, कौन सी चेतना में सुनेगा वो। तो यहां पर हम लोग जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का प्रयास करते हैं, तो हमारा भाग्य देखिए कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम अपने इस जीवित शरीर में श्रीमद् भागवत का श्रवण करते रहें, उसका कथन करते रहें, तो क्या क्या नहीं हमारे लिए निर्धारित भगवान करके रखे हैं। तो ये एक उदाहरण है अवांछित संतान, ये धुंधुकारी का उदाहरण पद्म पुराण से। श्रीमद् भागवत में एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है अवांछित संतान का, चतुर्थ स्कंद में है। ध्रुव महाराज के वंश में एक राजा हुए अंग, और वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, परंतु उनका विवाह हुआ मृत्यु, मूर्तिमान मृत्यु की पुत्री। सोचिए उनके ससुर जी कौन थे, मृत्यु मूर्तिमान। महाराज अंग के ससुर थे मृत्यु, तो उन्हें भी कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो अंततः वो भी अपने भाग्य से विरुद्ध जाकर उन्होंने एक पुत्र की प्राप्ति की किसी यज्ञ के द्वारा, और वो पुत्र हुआ वेण नाम का। और ये भी धुंधकारी के समान बचपन में खेलते खेलते बच्चों को मार दिया करता था, सारे अधर्म। तो महाराज अंग ने जब देखा तो चतुर्थ स्कंध में वर्णन है कि महाराज अंग ने सोचा कि शायद भगवान की योजना है कि मैं ये जो भी मेरी आसक्तियां हैं इस घर परिवार में छोड़कर मैं भगवान की भक्ति पूर्ण रूपेण करूं, तो उन्होंने संन्यास ले लिया। फिर आगे चलकर कथा आती है कि वेण को ब्राह्मणों ने अपने हुंकार से खत्म किया और वेण के शरीर से पृथु महाराज उत्पन्न हुए। तो ये वेण की कथा है जिसमें अवांछित संतान कौन है इसकी परिभाषा दी गई है। अब अर्जुन के अनुसार अवांछित संतान का जिम्मेदार कौन है, ये जो तीन श्लोक हमने लिए हैं जिसमें कुल का नाश, कुल धर्म इत्यादि, स्त्रियों का प्रदूषण, अवांछित संतान, नारकीय जीवन, पिंडोदक क्रिया की समाप्ति, ये सब में यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि अर्जुन के अनुसार जिम्मेदार कौन है अवांछित संतान का, आप क्या कहोगे? क्या उस संतान की गलती? मां बाप, मां बाप की गलती। तो हमें इससे यह समझना है कि कलयुग में देखिए कितने अलग अलग प्रकार के दुराचार और अधर्म प्रचलित हैं, तो कितने ऐसे अवांछित संतान हर क्षण पैदा हो रहे हैं। परंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा ऐसी है और श्रील प्रभुपाद के द्वारा ऐसे कितने अवांछित संतानों का उद्धार चैतन्य महाप्रभु की कृपा कर रही है। श्रील प्रभुपाद के ये पर्सनल सर्वेंट शिष्य हरिशौरी प्रभु, इन्होंने श्रील प्रभुपाद को कहा कि जब वो अपनी माता के गर्भ में थे तो उनकी माता उन्हें मारना चाहती थी, गर्भपात कराना चाहती थी, और उनकी जो नानी थी उनकी नानी ने यह प्रस्ताव रखा था कि यदि तुम्हें यह शिशु नहीं चाहिए तो गर्भपात करा लो। तो ये चर्चा चल रही थी, अंततः इनकी माता के विचार कुछ बदल गए और इन्होंने फिर नहीं किया गर्भपात किसी कारण के वजह से। तो कल्पना कीजिए यदि हम उस स्थिति में होते, प्रभुपाद इतना आश्चर्यचकित हुए कि ये आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में इतना बड़ा प्रचारक बना, श्रील प्रभुपाद के वो शिष्य अभी भी हैं और इतने लोगों को भगवत धाम ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने श्रील प्रभुपाद के संदर्भ में कितनी पुस्तकें लिखी हैं। सोचिए कि यदि उनकी माता वो गर्भपात कर देती तो एक जीव जो कि मनुष्य योनि में आकर भी शुद्ध भक्ति में इतना लगा, कितना बड़ा, केवल अधर्म नहीं, अधर्म में भी कितना बड़ा अधर्म होता उनके हाथों से। और मैं एक ऐसे ब्रह्मचारी को जानता हूं जिनकी माता उनका गर्भपात कराना चाहती थी और वो अब रोती हैं कि मैं यदि उस प्रकार का वो इतना धार्मिक कार्य कर देती, आज जब वो अपने पुत्र को देखती हैं तो कई बार वो डर के मारे यदि मैं वैसा कर देती तो कितना बड़ा पाप मेरे हाथ हो जाता। तो यहां पर अर्जुन ये बोल रहे हैं कि स्त्री प्रदूषण, स्त्री प्रदूषण के कारण वो अवांछित संतान की उत्पत्ति होगी। और स्त्री का प्रदूषण कौन करता है? पुरुष। ये अर्जुन बोल रहे हैं। तो जिम्मेदार कौन होगा? वो पुरुष जो स्त्री का प्रदूषण करेंगे। तो आजकल जो चल रहा है ये आधुनिक 21वीं सदी का ये जो समाज है जिसके अंदर इतना प्रदूषण फैल रहा है पुरुषों के द्वारा और स्त्रियों के द्वारा, और इन दोनों के द्वारा जो संतान उत्पत्ति हो रही है, मेरे ख्याल से कोई बहुत ही विरला, कोई दुर्लभ होगा जो वांछित संतान होगा। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, ऐसे ऐसे देश हैं जहां पर स्त्री पुरुष बच्चा पैदा कर रहे हैं खाने के लिए, और ये हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन आया हुआ है, और ये अभी शुरू हो गया ह्यूमन फिटस, और ये रेस्टोरेंट में, होटलों में ये डेलिकेसी के रूप में परोसा जाता है। तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम कितने सुरक्षित हैं इस कलयुग में रहते हुए भी, कि हमारे चारों ओर ये कलयुग जो इतना फैला हुआ है, जहां पर ऐसे ऐसे अधर्म हो रहे हैं कि कोई व्यक्ति गिरा हुआ राक्षस जैसे कंस भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। उसने भी कभी गर्भपात नहीं किया, वो पैदा होने के बाद मारता था कंस भी। तो यहां पर यह समझना आवश्यक है कि अर्जुन कहां पर संकेत दे रहे हैं, कौन जिम्मेदार है इसका। अब श्री कृष्ण के अनुसार भगवद गीता में चार प्रकार के अवांछित संतान, अर्थात जो बड़े होने के बाद दिखा देते हैं कि कैसे वो अवांछित हैं, कहां पर भगवान ने कहा है इनके बारे में? सातवें अध्याय में, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, माया अपरित ज्ञानम आसुरिम भावम आश्रित, याद है श्लोक अभी तक? तो ये चार अवांछित व्यक्ति, सबसे पहले मूढ़। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो जो केवल जानवरीय जीवन जीते हैं, केवल आहार निद्रा भय में, बस उससे ज्यादा और कोई जीवन हमें जीना नहीं। तो ये हैं मूढ़ अवांछित लोग। तो जो केवल इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं श्री कृष्ण के अनुसार अवांछित। फिर है नराधम, नरों में अधम, अर्थात कोई संस्कार नहीं, किसी भी प्रकार का धर्म का आचरण पालन नहीं कर रहे, जो कि जंगली प्रकार के लोग, ये हैं नराधम। माया पृथक ज्ञान, ये वो हैं, इनको भी भगवान ने अवांछित कहा है, जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं परंतु ये नहीं जानते कि माया के द्वारा उनका ज्ञान माया देवी ने हर लिया है। माया अपृतक ज्ञान, तो ये ज्ञानी इस श्रेणी में। और फिर आसुरिम भावम आश्रित, और जो राक्षसी प्रवृत्ति के, जो आसुर और असुर के भाव का आश्रित आश्रय ग्रहण किए हैं वैसे लोग। तो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इनके क्रियाओं से समझ में आता है कि इनकी कोई जरूरत नहीं थी इस पृथ्वी पर, ये फालतू पैदा हुए। जैसे ये घटना हुई, अब श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गर्भपात के विषय में इतना उसके विरुद्ध में बोले हैं, दो चीज, एक तो एबॉर्शन और गोहत्या, गर्भपात और गोहत्या के विषय में प्रभुपाद इतना स्ट्रांगली बोला करते थे। परंतु हुआ क्या कि एक बार, ये वृंदावन की बात है, श्रील प्रभुपाद एक मॉर्निंग वॉक पर थे तो एक व्यक्ति के विषय में जो अपने आप को भगवान बोल रहा था, अपने आप को कृष्ण बोल रहा था, भगवान मान लिया और सबको बोल रहा है कि मैं ही वो कृष्ण हूं, अपनी रासलीला शुरू कर दी, सब प्रकार के कुकर्म कराने लगा कृष्ण के नाम पर। तो इसके विषय में श्रील प्रभुपाद को जब बताया गया तो हुआ क्या कि ये व्यक्ति जो अपने आप को भगवान कृष्ण बोल रहा और सारे कुकर्म कर रहा, तो इसकी मां ने कहा कि मैं इसे अपना पुत्र नहीं मानती, मैं अपने आप को कोस रही हूं कि मैंने ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया। तो प्रभुपाद चलते चलते गए, उसे गर्भ में मार डालना चाहिए था। सभी भक्त डर गए, ये प्रभुपाद जो अब तक अबॉर्शन के बारे में कह रहे थे, तो प्रभुपाद अर्थात ये नहीं बोल रहे थे कि अबॉर्शन होना चाहिए, परंतु प्रभुपाद ये कह रहे थे कि आगे चलकर इसने जो ये काम किए जो इसमें से एक श्रेणी में आ सकता है वो। तो व्यक्ति यदि किसी अच्छे नक्षत्र में भी पैदा हुआ हो परंतु आगे चलकर उसके कर्म यदि ऐसे हो जाएं ये श्रेणियों में, तो वो भी अवांछित संतान कहलाया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि अवांछित संतान पैदा होते ही समझ में आ जाता है कि अवांछित है, उसके कर्मों से समझ में आता है कि वो वांछित है या अवांछित है, इस पृथ्वी का भार है या इस पृथ्वी का भार कम करने के लिए वो पैदा हुआ है। अब हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, इनके अनुसार चार प्रकार के अवांछित वाद ये अवांछित लोग पैदा करते हैं। ये जो चार अवांछित लोगों की चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने की है, तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक पुस्तक चैतन्य शिक्षामृत में कहते हैं कि चार प्रकार के अवांछित वाद, वाद आप समझते हैं अभी यहां पर और अच्छी से समझ में आएगा। सबसे पहला वाद है नास्तिक के वाद, फिर है जड़वाद, शून्यवाद और मायावाद। नास्तिकवाद का अर्थ है जो नास्तिक, भगवान है ही नहीं, ये है। तो इनमें भी देखिए ये जो अवांछित वाद है इनकी भी श्रेणियां हैं। तो सबसे निचले दर्जे के हैं जो भगवान को मानते ही नहीं, कि वो है ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर जड़वाद, जड़वाद का अर्थ है कि केवल मटेरियलिज्म, इंद्रिय भोग, बस यही जीवन का लक्ष्य है। यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनः आगमन भवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। ये चार्वाक मुनि कि केवल किसी न किसी प्रकारेण ये न के न प्रकारेण इंद्रिय भोग करो, इसे कहते हैं जड़वाद। शून्यवाद, ये इंद्रिय भोग से बहुत विरक्त रहते हैं ये जो शून्यवादी होते हैं, और ये भी नहीं कहते कि भगवान नहीं है, परंतु ये भी नहीं कहते कि भगवान कौन है। तो ये वो बीच की कैटेगरी, इसलिए सब कुछ शून्य और बस आप शून्य पर ध्यान करो और शून्य आप बनोगे, शून्य में लीन होगे। तो एक ने इतनी मोटी पुस्तक लिखी, श्रील प्रभुपाद ने पूछा कि ये जी सब कुछ शून्य में जा रहे हैं तो पुस्तक इतनी मोटी क्यों लिखने की जरूरत है। प्रभुपाद ने कहा सच अ बिग बुक ऑन जीरो, ये सब कुछ शून्य होने वाला है। और फिर मायावादी, फेवरेट प्रभुपाद के। तो जब प्रभुपाद शुरुआत में अमेरिका में ये मायावादियों के विषय में बोला करते थे तो अक्सर कुछ जैसे गुरुदास प्रभु वो अपने पुस्तक में लिखते हैं, वो नए नए जब आए तो उनको तो पता नहीं था क्या होता है मायावाद, क्या होता है। कुछ पता नहीं था, वो तो सब हिप्पी या नशे में धुत। और यहां प्रभुपाद बोल रहे हैं, सो द मायावादीज दे डोंट अंडरस्टैंड द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। ये लोग सुनिए, उनको लगा कि शायद ये कोई मायावादी कोई ग्रुप होगा इंडिया में जो प्रभुपाद के साथ कुछ गड़बड़ किया है, ये हर बार मायावादी मायावादी को ले लेके उसको धोपटते रहते हैं। परंतु फिर वो जब भारत में आए तब उन्हें समझ में आए कि ये मायावाद है क्या, कितना प्रचलित है। मायावाद का अर्थ है भगवान वो उनका कोई रूप नहीं, वो जब रूप लेके आते हैं तो माया के अधीन वो रहते हैं। और वो सब छोड़ दीजिए, हम ही वो भगवान हैं। जैसे हाल ही में हमारे बंबई के एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर, वो बॉम्बे सेंट्रल पर बुक बांट रहे थे, तो एक व्यक्ति ने देखा भगवत गीता का संदेश पुस्तक देखी, अरे कृष्ण तो घाटकोपर में पैदा हुए हैं। वाह, तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूटर ने पूछा कब हुआ, वो मतलब टाइम तो हो गया, बड़े हैं अभी, लेकिन घाटकोपर में है अभी कृष्ण। अच्छा, तो इन्होंने पूछा वो जो पिछले साल दादर में थे वो क्या, उनका क्या हुआ, वो कृष्ण का, इतनी बड़ी मूछ वाले, उनका टर्म एक्सपायर हो गया, वो हैंडओवर किया अभी इनको, अभी दादर से घाटकोपर पे आ गए, ये चल रहा है कलयुग में। जैसे एक मायावादी वो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर के पास आए और बहुत बड़े विद्वान, शास्त्र के ज्ञाता, बहुत बड़े विद्वान, तो ये मायावादी भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर से मिल नहीं पाए, तो सबसे पहले उनके जो शिष्य ब्रह्मचारी और सन्यासी शिष्य सरस्वती ठाकुर के, तो उन्होंने उनसे वाद विवाद किया और वाद विवाद में इस मायावादी ने हरा दिया, सब गौड़िया मठ के सन्यासी को और ब्रह्मचारी को हरा दिया। तो अब ये कहे कि इतना बड़ा विद्वान मायावादी और हमको हरा दिया, तो गुरु महाराज से मिलाना ही पड़ेगा इसको। तो किया क्या कि इन्होंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब प्रवचन दे रहे थे तो प्रवचन में बिठा दिया, इनको सुनो पहले। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पता नहीं था कि ये बैठा है, तो उन्होंने उस दिन भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया। और बैठा कौन है, मायावादी। तो अभी बाकी सारे ब्रह्मचारी सन्यासी प्रतीक्षा में है कब प्रश्नोत्तर का सिलसिला शुरू होगा, जब ये पूछेंगे कोई प्रश्न तो हम देखते हैं फिर ये जीत पाता है क्या। तो वो सब एक्साइटेड थे, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपना पूरा प्रवचन भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता के ऊपर दिया उन्होंने, जो कि साधारणतः वो नहीं देते थे इतना। तो सुंदरता पे प्रवचन देने के पश्चात फिर पूछे उन्होंने, किसी का कोई प्रश्न है, तो सभी अब पीछे देख रहे हैं, वो पूछ नहीं रहा, और वो जैसे मानो कोई हक्का भक्का हो जाता है उस प्रकार से वो बैठा हुआ, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं फ्रोजन। तो कोई प्रश्न नहीं तो सर ठाकुर श्रीमद भागवतम की जय चले गए। और ये सब प्रश्न क्यों नहीं पूछा तुमने, इतना हमको पूछ पूछ के हमको हरा दिया। तो इसने कहा पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे प्रश्न पूछना था बट आई वॉज ब्लैंक्ड आउट, पूरा ब्लैंक हो गया मैं, कुछ प्रश्न पूछ नहीं पाया। ऐसा करूंगा मैं वो सारे प्रश्न अभी लिख लेता हूं, वो जाने के बाद अभी मुझे ध्यान में आ रहा है क्या क्या प्रश्न मुझे पूछना, तो अभी मैं लिख लेता हूं और कल वापस बोलेंगे ना ये, तो कल मैं वो जो प्रश्न मेरे लिखे हुए हैं वो मैं पढ़ के पूछूंगा। तो दूसरे दिन फिर से, तो दूसरे दिन के प्रवचन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो फिर से अब भगवान के नाम की महिमा, भगवान की लीला की महिमा सुनाने लगे। और अब सभी अगल बगल में इसके बैठे थे कि ये जो लिख के लाया है पर्चे पे सारे प्रश्न, तो वैसा ही हुआ। प्रवचन के बाद इन्होंने पूछा, किसी का कोई प्रश्न? अभी सभी देखे, इधर लिख के लाया तो पूछेगा ही ना। फिर से कुछ नहीं पूछा इसे, दूसरे दिन में कुछ नहीं पूछा। तो सरस्वती ठाकुर उठ के गए, तो ये गए कि क्या हुआ, पर्चा लिख के लाए थे इतना प्रश्न? इसने कहा, यस्टरडे आई वॉज ब्लैंक्ड आउट, टुडे आई वॉज ब्लाइंडेड, मैं देख ही नहीं पाया। मैं पर्चे पे देख रहा था लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, एक प्रश्न दिखाई नहीं दिया मुझे। तो वो एक ब्रह्मचारी ने कहा, ऐसा करो, कल भी ये प्रवचन देने वाले हैं, अभी वो मेरे को दे देना पर्चा। हाँ, वो जब पूछेंगे एनी क्वेश्चन मुझे दे देना, तो मैं पूछूंगा, या अभी दे दो मुझे, तो मैं पूछूंगा कि ये आए हैं, इनका ये प्रश्न है। तो तीसरे दिन भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर अपना प्रवचन शुरू किए, और फिर वैसे ही प्रवचन के अंत में पूछा, किसी का कोई प्रश्न? तो ये ब्रह्मचारी पर्चा लेके तैयार। तो इन्होंने पूछ लिया कि ये आज आए हैं सन्यासी, मायावादी सन्यासी आए हैं, तो इनका ये प्रश्न है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने पूछा कि कौन है, किसका प्रश्न? तो ये जो ब्रह्मचारी जो पर्चे से प्रश्न पूछे, पीछे मुड़ के उनको कहे कि बोलो बोलो मैं हूं। देखे तो इनकी आंखों से आंसू, इनका पूरा चेहरा बदला हुआ आंखों से आंसू, और इन्होंने कहा, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए। उन्होंने जाकर साष्टांग दंडवत किया भक्ति सिद्धांत ठाकुर को, और वो आगे चल के बने आदि केशव स्वामी। उनके बहुत बड़े विद्वान सन्यासी, जिन्होंने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी, आदि केशव स्वामी। तो यहां पर भक्ति विनोद ठाकुर जो ये अवांछित वाद के विषय में बोल रहे हैं, इसमें से विशेष रूप से ये जो चार हैं, ये कलयुग में प्रचलित हैं। इसलिए अर्जुन जब द्वापर युग में बोल रहे हैं कि कुल नाश से कुल धर्म का नाश, कुल धर्म के नाश से स्त्रियों का प्रदूषण, स्त्रियों के प्रदूषण से अवांछित संतान, अवांछित संतानों के वजह से नारकीय जीवन, नारकीय जीवन के वजह से पिंडोदक क्रिया की समाप्ति, अर्थात कलयुग में हम कैसे समझेंगे, कोई पहचान नहीं पाता। पहले के युगों में तो कोई गर्भ में भी, जैसे दुर्योधन का उदाहरण दिया गया कि दुर्योधन पैदा होने से पहले सभी जान गए कि यह अवांछित है, तो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण और जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसार, कलयुग में हम कैसे जाने कि कौन है अवांछित संतान, ये आठ श्रेणी, पहले के जो चार और अभी के चार, ये आठ श्रेणी के जो हैं, इनको देखने से पता लग जाता है इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, उल्टा ये और भार बढ़ा रहे हैं इस पृथ्वी का, अवांछित संतान इनके अनुसार। इसलिए अब अर्जुन इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के सामने वो नारकीय जीवन कैसे फैलता है, एक परिवार में कुल धर्म का नाश होने की वजह से उस परिवार में नारकीय जीवन, और वो नारकीय जीवन कैसे पूरे समाज में वो परिवार फैलाता है, इसकी चर्चा अब और आगे अर्जुन थोड़ा विस्तार से करेंगे। और इस अध्याय का अंत आ रहा है जहां पर अर्जुन अब इतने सारे तर्क वितर्क अपने सामने रखे हैं, भगवान के सामने रखे हैं, कि मानो कोई तीसरा व्यक्ति को लगेगा कि अरे भगवान श्री कृष्ण ये पहले अध्याय के बाद तो बोल ही देंगे, चलो चलो चलते हैं, क्या तुम तो इतना मेरे लिए तो कुछ बोलने के लिए रखा ही नहीं, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण सुनने के पश्चात, और हालांकि दूसरे अध्याय में भी कुछ समय बाद शुरू करेंगे बोलना, परंतु इस अध्याय के अंत ये जो आ रहा है इसमें अर्जुन की जो विफलता है युद्ध नहीं करने की, और अर्जुन के अंदर ये जो तीव्रता है धर्म, वो धर्म शास्त्रों के पालन करने की, वो बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। अर्जुन की चिंता, अर्जुन का शोक, अर्जुन का विषाद, जो कि इस अध्याय का शीर्षक है, अर्जुन विषाद योग। हरे कृष्ण। वो स्पर्धा हुई नहीं थी,
स्पर्धा हुई थी तो अर्जुन ने अर्जुन को भी हराया था और
नहीं,
भीम
नहीं, नहीं,
को भी
अर्जुन
हराया
को हराया नहीं था। आज का एपिसोड मतलब
दुर्योधन ने उसको अपना राज दिया था ना, जब बोला कि ये ब्राह्मण नहीं है।
नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा सीरियल क्या? नहीं नहीं, हाँ नहीं ये बात ठीक है, लेकिन स्पर्धा नहीं होती उसमें, उसमें स्पर्धा नहीं होती दोनों में, और ये बात निर्धारित नहीं की जाती कि कौन किससे बड़ा है और कौन किससे निपुण है। एक मित्र द्रोही क्यों कहला गया? क्योंकि दुर्योधन ने जब कर्ण को देखा तो दुर्योधन के मन में कर्ण की सहायता करने का कोई विचार नहीं था। दुर्योधन केवल कर्ण को इस्तेमाल करना चाहता था पांडवों को खत्म करने के लिए। तो ये जो दोस्ती थी दोनों की, अधिकांश लोग ये जो दुर्योधन और कर्ण की जो दोस्ती है इसका गुणगान करते हैं कि देखो ऐसे दोस्त होने चाहिए, परंतु वो दोस्ती नहीं थी, वो केवल अपना काम पूरा करने के लिए दुर्योधन ने वो अंग देश का राजा कर्ण को बनाया। और ठीक है यदि ये भी मान लिया जाए कि उस समय दुर्योधन ने सहायता की कर्ण की, कर्ण को राजा बनाया, परंतु उसके बाद कर्ण ने अपनी आंखों से देखा कि दुर्योधन किस प्रकार का कुकर्मी है, तो उस समय कर्ण को अपनी वो आसक्ति वहां पर तोड़नी चाहिए थी, जो कि कर्ण ने नहीं की। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की सहायता करे, परंतु यदि वो कुकर्मी है तो उसका संग नहीं करना चाहिए। और कर्ण को इस बात का भान हो चुका था कि ये दुर्योधन मेरे साथ दोस्ती इसलिए किया है क्योंकि अर्जुन को मारना चाहता है मेरे द्वारा। और इतना सब छोड़ दीजिए, यहां तक भी कर्ण को क्षमा किया जा सकता था, परंतु जो उस असत सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का विचार कर्ण ने प्रस्तुत किया था, तो वहां पर कोई किसी की दोस्ती नहीं मानी जा रही। कि यदि कोई व्यक्ति इतना गिरा हुआ सुझाव रख सकता है जो कि दुर्योधन के भी मन में नहीं आया, सोचो, तो उस दृष्टिकोण से दुर्योधन से भी गिरा हुआ था कर्ण, जो इस प्रकार का कुत्सित विचार दुर्योधन के सामने प्रस्तावित करता है कि द्रौपदी को नग्न करो, तो कोई नहीं कह सकता कि कर्ण बेकसूर था या ये सब चीजें, केवल वो एक बात को लेते हुए बस। और खैर कर्ण के विषय में बताया भी गया है कि कर्ण अपने पिछले जन्म में एक राक्षस था, सहस्त्र कवच नामक, वो दूसरी कथा है। और कोई प्रश्न? एक एक मिनट,
को बता दिया ये प्रद्युम्न के बारे में।
किसके बारे में?
प्रद्युम्न के बारे में।
प्रद्युम्न?
प्रद्युम्न दृष्टद्युम्न।
दृष्टद्युम्न
उसको तिरस्कार भाव से उसने बताया द्रुपद पुत्रेण इस तरह क्यों कहा गया है?
द्रुपद पुत्रेण,
द्रुपद
क्यों
पुत्रेण? हाँ,
क्योंकि दुर्योधन जानता था कि द्रोणाचार्य और द्रुपद ये दोनों में बैर है। दुर्योधन जानता था और इसलिए दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को याद दिलाया कि आपने द्रुपद के पुत्र को आशीर्वाद दिया है विजयी भव दृष्टद्युम्न को, जबकि आप जानते हैं कि दृष्टद्युम्न को पैदा द्रुपद ने इसलिए किया है केवल आपको मारने के लिए। तो द्रोणाचार्य के अंदर द्रुपद के प्रति वो द्वेष और वो क्रोध और ज्यादा उकसाने के लिए कहा द्रुपद पुत्रेण, नाम नहीं लिया दृष्टद्युम्न बल्कि द्रुपद का याद दिलाते हुए कि याद है द्रुपद ने क्या अपमान किया था, और वो सामने है दृष्टद्युम्न उसका पुत्र और वो सेनापति है तो छोड़ना मत। इसलिए दुर्योधन वो एक राजनीतिक कैसे बात करता है, पॉलिटिकल, उसका पॉलिटिकल लैंग्वेज था ये सब तरीके से बोलने के। नहीं, अवांछित संतान नहीं था वो। कर्ण एक प्रकार से कुंती महारानी की गलती तो नहीं कहेंगे, क्योंकि कर्ण को पैदा होना था एक पांडव के रूप में और कर्ण का उद्धार अंततः हुआ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नर नारायण के द्वारा द्वारा कर्ण जब मारा गया, तो उस दृष्टिकोण से ये नहीं कहेंगे कि कर्ण अवांछित था, परंतु क्योंकि उस पिछले जन्म में वो एक राक्षस था और राक्षस का संबंध भगवान से हो गया इसलिए उसका अंततः उद्धार हुआ। पिछले युग में भी, अर्थात पिछले जन्म में भी और फिर इस जन्म में भी, तो क्योंकि वो इतना बड़ा राक्षस था इसलिए भगवान नर नारायण की कृपा इसको मिली। इस हम उसकी चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण यदि किसी राक्षस का वध करते हैं अपने हाथों तो वो राक्षस का भी वो स्तर होना चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से कर्ण का वो स्तर था कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा वो मारा गया और फिर उसका उद्धार हुआ। के बच्चे अवांछित कर्म कर रहे हैं तो उन्हें कैसे सांत्वना दे? सबसे पहले माता पिता को वांछित कर्म करने चाहिए अपने कर्मों द्वारा और अपने उदाहरण द्वारा बच्चों को ये संस्कार देने चाहिए, और यदि इन सब के बावजूद वो संतान यदि वांछित कर्म नहीं करे तो भागवत में महाराज अंग का उदाहरण है। तो एक है महाराज अंग का उदाहरण जिनको अवांछित संतान हुई वेण के रूप में, और सातवें स्कंद में उदाहरण है प्रहलाद महाराज का जिनको अवांछित पिता मिले। तो यहां पर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि अरे यदि महाराज अंग को प्रहलाद महाराज जैसे पुत्र होते और हिरण्यकशिपु को यदि वेण जैसा पुत्र होता तो क्या कॉम्बिनेशन थे? नहीं तो फिर भगवान श्री नरसिंह देव वो नहीं प्रकट होते। तो महाराज अंग ने ट्राई किया वेण को वांछित संतान बनाने का, और प्रहलाद महाराज ने ट्राई किया हिरण्यकशिपु को वांछित पिता बनाने का। अंततः यदि उनसे भी नहीं हो पाया तो फिर उन्होंने जो, जैसे कि प्रहलाद महाराज ने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को अवतरित कराया और हिरण्यकशिपु वही भाषा समझ पाया, और महाराज अंग ने भगवान की ये कृपा देखी, कि भगवान चाहते हैं कि मैं अब इस जंजाल से बाहर निकलकर पूर्ण रूपेण भगवान की भक्ति करूं, ताकि मैं आसक्त न हूं, चाहे वो वांछित हो या अवांछित हो, अंततः उन सबको त्यागना ही है एक न एक। पहले से बनाए हुए हैं भक्ति शास्त्री के लिए, उसकी पुस्तिका है। नहीं नहीं, ये जो ये हम बहुत डिटेल में जा रहे हैं, ये सारे प्रश्न आपको भक्ति शास्त्र में नहीं पूछे जाएंगे। ये सारे पूछने लग जाएं तो फिर कोई नहीं बैठेगा भक्ति शास्त्र में। तो हम काफी डिटेल में जा रहे हैं, ये हम इसलिए जा रहे हैं ताकि हमारा जो भगवद गीता के एक एक श्लोक का क्या संबंध है उस पूरे अध्याय से और बाकी सारे श्लोकों से, उसका ज्ञान पक्का हो और साक्षात्कार उसके साथ उसका पक्का हो। तो आपको एक सूचना देना चाहेंगे, हमारा जो हम पिछले